अयांश आरवी से दूर हुआ। आरवी तड़प उठी। अयांश ने प्यार से आरवी का माथा चूमा और गाल सहलाते हुए बोला, अभी आया। ये सुन आरवी ने आंखें मूंद ली और अयांश वहां से चला गया। कुछ देर बाद जैसे ही अयांश वापस आरवी के पास आया तो उसकी आहट सुन आरवी का सीना ऊपर नीचे होने लगा। आरवी ने उसी पल आंखें खोली तो उसके ठीक सामने और समीप ही खड़े अयांश की आंखों से उसकी आंखों का मिलन हो गया। अयांश शर्टलेस था और उसके बेताब नजरें बेड पर लेटी आरवी को देखे जा रही थी। अयांश की तपिश भरी निगाहों को खुद पर महसूस करते हुए और उसके खुले चौड़े सीने को देखकर आरवी का गला सूखने लगा। उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और गहरी गहरी सांसें भरते हुए अपने पैरों को मसलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो नीले रंग में सजी कोई परी अपने समुद्र तक पहुंचने के लिए बेचैन हो, और समुद्र भी उतना ही बेताब था अपनी लहरों में उसे समेट लेने के लिए। लेकिन उसने खुद को रोक रखा था और उसका यूं रोकना आरवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी आरवी मधोशी भरी आवाज में अयांश को निहारते बोली, क्या चाहते हैं आप? तभी अयांश बेड पर घुटने टेक आरवी की ओर थोड़ा सा झुकते हुए बोला, सिर्फ तुम्हें? आरवी मुस्कुरा दी। फिर तड़पाने की वजह? अयांश थोड़ा और आरवी पर झुक गया। आज ऐसी कोई वजह नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं मेरा, आरवी पलके झपकाते। फिर अयांश ने आरवी पर शिद्दत भरी नजर डाली, अब ना तुम्हें तड़पाऊंगा ना खुद को तड़पने दूंगा। अयांश ने जिस तरह और जिस अंदाज में ये बात कही, आरवी तेज तेज सांसें भरने लगी। अब क्या होने वाला था इससे ना तो वो अनजान थी और ना ही ऐसा था कि वो नहीं चाहती थी जो अयांश चाहता है। अयांश आराम से आरवी के करीब होकर बेड पर बैठ गया। वो अपना हाथ आरवी के खुले पैर पर धीरे धीरे फेरने लगा, जिसके चलते आरवी को शर्माने लगी, धड़कने भी बढ़ने लगी, पूरे बदन में करंट सा दौड़ उठा और उसने उसी पल ही अपने होठों को दांतों से चबाते हुए अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देख अयांश दीवानगी भरे लहजे में बोला, कितनी बार कहा है, जब सामने हूँ पास हूँ तुम्हारी नजरें मुझसे हटनी नहीं चाहिए, देखो मेरी तरफ। आरवी ने अयांश की बात नहीं मानी तो अयांश फिर बोला, वाइफी मैंने कहा नजरें मुझ पर रहनी चाहिए। पर आरवी ने फिर भी नहीं सुना तो अयांश वहां से उठ गया। ये देखकर आरवी फट से बेड पर उठ बैठी और उसने अयांश की तरफ देखा जो बीच रूम उसकी ओर पीठ किए खड़ा था। वो मुस्कुरा दी और अयांश के पास चली आई और पीछे से अपने हाथ अयांश के सीने पर रख उसकी पीठ पर अपना सिर टेक मुस्कुराते बोली, नाराज हो गए? अयांश कुछ नहीं बोला। उसने आरवी की छुअन पाते ही गहरी सांस भर ली। फिर आरवी अपने हाथों उसका सीना सहलाते हुए अपना गाल उसकी पीठ पर रगड़ते हुए फिर बोली, आज भी गुस्सा करना है? आगे वो कुछ बोल पाती इससे पहले अयांश उसकी ओर मुड़ गया और आरवी का बैलेंस भी बिगड़ गया, जिसके चलते वो बेड पर जा गिरी। अयांश उसकी ओर देखते, गुस्सा दिला कौन रहा है? आरवी हंसती, मैं ना? ये सुन अयांश उसे घूरने लगा कि तभी आरवी मुस्कुराते हुए गाने लगी, आजा पिया तुहे प्यार दूं, कहते हुए उसने अयांश की ओर आई विंक किया और होठों का प्यारा सा पाउट बना लिया, जिसके चलते अयांश का मूड उसी पल ठीक हो गया। अयांश आरवी के करीब आ खड़ा हुआ, तुहे प्यार दूं? कि तभी बिल्कुल दीजिए, कहते आरवी फिर बेड पर जा लेटी और अयांश की ओर अपनी बाहें खोल दी। आज नो गुस्सा नो नाराजगी नो दूरी, कि तभी अयांश बिना एक पल की देरी किए आरवी के करीब चला आया, जिसे आरवी ने बड़े प्यार से अपनी बाहों के आगोश में भर लिया। बीतते हर पल उनका प्यार उनकी करीबी बढ़ती जा रही थी। मधोशी भरी अयांश की सांसें और आरवी की आंखें उस समुद्र किनारे कमरे में गूंजने लगी। दोनों बेड पर एक दूजे की बाहों में झूल रहे थे। अयांश आरवी के गर्दन को चूम नीचे जाने लगा कि तभी आरवी बेड पर पलट गई। अयांश की नजर आरवी की खुली सी पीठ पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर आरवी के पीठ पर आए उसके बालों को साइड किया और पीठ से कमर तक अपना प्यार भरा एहसास छोड़ने लगा। आरवी आंखें मूंदे सिसकियां भरने लगी। अब कमरे का माहौल काफी रोमांचित और दोनों बेहद रोमांटिक हो चुके थे। तभी अयांश आरवी के ऊपर से उठा और उसे वापस उलट दिया। दोनों की नजर एक बार मिली कि अयांश ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बाहों में भर बड़े प्यार और शिद्दत से उसके कंधे को चूमने लगा। आरवी उसकी बाहों में बिखरती जा रही थी और वो उसे संभाले कंधे से गर्दन, गर्दन से सीने और सीने से होठों तक चलाया। नजरें एक दफा फिर मिली। दोनों के बदन से हर उठे, धड़कनें बेकाबू थीं, होठ आपस में मिले और सांसें भी उनकी आपस में घुलने लगी। दोनों की वो किस काफी देर तक चलती रही। अयांश आरवी को लिए बेड पर लेट गया, होठों को चूमते कभी अयांश आरवी के ऊपर तो कभी वो उसके ऊपर। बाहर समुद्र की लहरें उफान पर थीं और भीतर उनकी मोहब्बत। कमरे में गूंजती सांसें, सिसकियां और धड़कनों की आवाजें उस रात को और भी मदहोश बना रही थीं। मेहरा सदन, आप मेरे लिए कॉफी क्यों लेकर आए? मालती ने विनीत से कॉफी मग लेते हुए बोला। विनीत कॉफी का घूंट भरते सीढ़ियों पर बैठ गया। वो मैं अपने लिए लाया तो आपके लिए भी ले आया। मालती भी उसके पास ही बैठ गई। रियली? विनीत मालती की ओर देख, अरे हाँ, आपको कॉफी पीनी थी पर आपने राधे से बोला था, उसको दादू ने बुला लिया तो मैंने कहा राधे तुम जाओ दादू के पास, उनको जरूरत है, कॉफी का मैं देख लूंगा। अपने लिए बना रहा हूँ, मालती के लिए भी बना दूंगा। वैसे मुझे कॉफी बनानी आती है, ज्यादा तो नहीं पर कभी कभी मैं बना लेता हूँ, स्पेशली खुद के लिए जब कोई और नहीं होता है बनाने वाला। मालती उसकी ओर देखते उसकी बातें सुन रही थी कि विनीत ने कॉफी मग की ओर इशारा किया, पीकर देखिए बताइए कैसी बनी है। ये सुन मालती ने कॉफी का घूंट भरा और विनीत की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए, अच्छी कॉफी बना लेते हैं आप। विनीत खुश होते, सच में अच्छी लगी ना आपको। मालती मुस्कुराते हुए, अब अच्छी बनाई है तो अच्छी ही लगेगी ना, वैसे मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी कॉफी बनाना जानते हैं, कह वो कॉफी पीने लगी। विनीत, वो दीने सिखाई थी, अच्छा लगा आपको मेरे हाथ की कॉफी अच्छी लगेगी या नहीं, बहुत ध्यान से बनाई थी आपका सोचकर कि आपको पसंद आए। मालती, पसंद आ गई, थैंक्स। विनीत, थैंक्स टू यू। मालती हंसती, क्या मुझे थैंक्स क्यों? विनीत, मुझे पसंद करने के लिए, मेरा मतलब मेरी बनाई कॉफी को पसंद करने के लिए। इस पर मालती ने कुछ नहीं कहा, वो कॉफी पीने लगी और विनीत मन ही मन, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम कहोगी पसंद आ गया मैं तुम्हें, जैसे आज कह रही हूँ मेरी कॉफी को। क्रमशः रोज समीक्षा करनी शुरू कर दीजिए, हमारा भी फिर बहुत सारा मन करे लिखने का।